मुख्य समाचारों में, ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए रॉयल कमीशन की सिफारिशें। न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ के पानी में एक व्यक्ति की मौत। बाढ़ के आदेश और चेतावनियों से हजारों प्रभावित। और ऑस्ट्रेलियन गोल्फर कैमरन स्मिथ द्वारा अगस्ता मास्टर्स में प्रभावशाली प्रदर्शन जारी। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। देश की कोविड-19 प्रतिक्रिया की जांच करने वाली सीनेट जांच की सिफारिशों के बाद ऑस्ट्रेलिया से अपना रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया गया है। रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में 19 सिफारिशों में से एक है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने महामारी को संभाला, साथ ही ऑस्ट्रेलियन स्वास्थ्य सुरक्षा प्रधान समिति जैसे स्वास्थ्य निकायों के लिए अधिक पारदर्शिता हो। सरकार को हर 2 साल में संसद को रिपोर्ट देनी होगी कि वो भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए कितनी तैयार है। सेनेट की जांच के अध्यक्ष लेबर की कैटी गैलाधर का कहना है कि निष्कर्ष कई प्रमुख क्षेत्रों में फेडरल सरकार द्वारा विफलताओं को दर्शाते हैं।
Particularly quarantine and the vaccine rollout, vaccine supply, aged care and also people with a disability and First Nations people. We think some of the problems with the response, some of the failures from the government has lengthened the lockdowns. We've had significant outbreaks as a result of them. Obviously more cases and unfortunately more deaths. So we think that those on those grounds alone there is a need for a royal commission.
Senator Gallagher ne kaha ki sardiyon ki agwai mein sifarishein mahatvapurn hongi. Swasthya adhikariyon ne mamlon mein badhotti ki chetavni di hai. सिडनी हवाई अड्डे पर बड़ी देरी के कारण हजारों की छुट्टियों की योजना अस्त व्यस्त हो रही है। मेलबर्न में ईस्टर ब्रेक और फार्मूला 1 ग्रांड प्री के लिए यात्रा करने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। आज सुबह टर्मिनल 2 पर 8 में से 3 सुरक्षा लेन बंद हैं। क्वांटस के मुख्य कार्यकारी एलन जॉयस प्रतीक्षा समय को अनुभवहीन ग्राहकों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। श्री जॉयस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोग भूल रहे हैं कि उन्हें अपने लैपटॉप और एरोसोल निकालने की आवश्यकता है। सिडनी के दक्षिण पश्चिम में कॉबिटिक में बाढ़ के पानी में डूबी कार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। न्यू साउथ वेल्स में रिकॉर्ड बारिश और बाढ़ का प्रबंधन जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। हॉक्सबरी नेपियन नदी के कैचमेंट क्षेत्र में बाढ़ के कारण सिडनी के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में विशेष चिंता है। पिछले 24 घंटों में 38 बाढ़ बचाव कार्य किए गए। 2000 से अधिक लोग 23 निकासी आदेशों के तहत हैं और उधर 16 निकासी चेतावनियों से 1700 से अधिक लोगों को प्रभाव पड़ा है। राज्य आपातकालीन सेवा के कार्यवाहक आयुक्त डैन ऑस्टिन का कहना है कि लोगों को अधिकारियों की सलाह को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।
We do expect to see those river levels continue to rise for some time before they start to ease back over the next 12 to 24 hours. So what that really means for us is that we will continue to have flooded waterways and flooded river systems for a number of days yet to come. So we ask people once again to be really mindful of their situation, their scenario, what is going on around them, and to be across the warnings and the reports from the Bureau as to what is actually happening.
तस्मानिया के नए प्रीमियर ने अपनी नई भूमिका को ईमानदारी और साहस के साथ निभाने का संकल्प किया है। डेप्यूटी प्रीमियर जेरेमी रॉकलिफ को आज सुबह लिबरल पार्टी रूम की बैठक में निर्विरोध चुना गया। वो पीटर गुडविन से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने सोमवार को अपने त्यागपत्र की घोषणा करते हुए कहा कि वो अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। जेरेमी रॉकलिफ ने पूर्ववर्तियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया और कहा कि वो राज्य के लिए उनकी विरासत को जारी रखेंगे।
It is my plan to lead a government with integrity. A government that is courageous. Accountable, delivers on its commitments. But above all, I will lead a government with heart. A government that listens to Tasmanians' needs and ensures Tasmanians' priorities continue to be our priorities.
लेबर का कहना है कि यदि वो फेडरल चुनाव जीतती है तो मरी डार्निंग बेसिन सिस्टम के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय जल आयोग की स्थापना करेगी। लेबर का कहना है कि आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि मरी डार्निंग बेसिन योजना में उल्लेखित 450 गीगालीटर पर्यावरणीय जल दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होगा। लेबर का दावा है कि फेडरल सरकार ने अब तक केवल 2 गीगालीटर पानी छोड़ा है। विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है जो वो चुनाव से पहले दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में करेंगे।
What we've seen from this government is that it's been adopted, but they don't deliver. This is a great example of a government that is all promise and no delivery, a government that is all talk, no action, a government that simply is held back by the National Party, by Barnaby Joyce and those forces upstream that don't want the water to flow here to South Australia. And it is so self-defeating, because if you don't have those environmental flows, the system will die.
दक्षिण कोरिया के साथ रक्षा सुरक्षा साझेदारी के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने विक्टोरिया में हनवा आर्मर्ड व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की साइट दी है। रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हनवा साइट बनने के बाद जिलोंग में सैन्य उपकरण और बख्तरबंद वाहन विकसित करेगी। दक्षिण कोरियाई नेता मून जे इन की यात्रा के दौरान पिछले दिसंबर में दोनों देशों के बीच $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ये सौदा संबंधों को मजबूत करेगा और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा।
There are decisions that have had to be made both in Korea and here in Australia. In an uncertain time, you do business with countries that you trust, and you do business with businesses that you know you can trust, that are aligned to how you see the world, that are aligned to ensuring a secure and free and open Indo-Pacific.
ऑस्ट्रेलिया द्वारा यूक्रेन को दिए जा रहे 20 आर्म्ड सैन्य वाहनों में से पहले 3 को आज क्वींसलैंड से उड़ाया जाएगा। पिछले हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा फेडरल संसद को सीधे अनुरोध के जवाब में ऑस्ट्रेलिया बुशमास्टर वाहनों की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेन के राजदूत ने इस समर्थन के लिए ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद दिया है।
To our personnel, military personnel in Ukraine as well. There is one ambulance vehicle which will be extremely helpful for us. Ukraine is a like-minded country for Australia. We do now understand, and myself, I've just arrived 2 weeks ago, the concept of mateship.
इस बीच रूस ने ऑस्ट्रेलिया पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये कैनबरा द्वारा यूक्रेन में युद्ध को लेकर मास्को पर लगाए प्रतिबंधों के प्रतिशोध के रूप में है। क्रेमलिन द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार के 228 सदस्यों और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन सहित सांसदों के लिए रूस की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। रूस पर तेजी से गंभीर आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंधों की शुरुआत करने में ऑस्ट्रेलिया अन्य पश्चिमी देशों में शामिल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस के खिलाफ और भी कड़े प्रतिबंध लगाने के अपने आह्वान को दोहराया है। यूक्रेन के लोगों को रात में अपने संबोधन में श्री ज़ेलेंस्की कहते हैं कि वर्तमान में जो प्रतिबंध लागू हैं वे उनके देश में रूस के युद्ध को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अमेरिका ने रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है और यूरोपीय संघ ने भी रूस से आते कोयले पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन श्री ज़ेलेंस्की ने और अधिक की मांग की है।
Але ж якби санкції працювали дійсно на 100%,
то If sanctions had really worked at 100%, then it wouldn't have been necessary to explain their importance in such a detailed and meticulous way. That's why I underline once again that we need more sanctions, more courageous sanctions. Courage and utility must be the criteria to assess the decisions.
भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एमिनिस्ट्री इंडिया के प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के लिए दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। पटेल ने कल शाम ट्वीट करके जानकारी दी थी कि अदालत से राहत मिलने के बावजूद उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से रोक दिया गया। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमरीका के लगभग 75 सेंट और भारत के 56.71 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में ऑस्ट्रेलिया के कैमरन स्मिथ का कहना है कि उन्होंने मास्टर्स के पहले दौर के बाद दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए अपने जीवन का बेहतरीन गोल्फ खेला। क्वींसलैंडर ने दक्षिणी यूएस राज्य जॉर्जिया में प्रसिद्ध ऑगस्टा नेशनल कोर्स में पहले दिन 4 अंडर पार 68 दर्ज किया। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। होबार्ट में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। कैनबरा में बौछारें, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। सिडनी में बौछारें, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक तो बौछारें, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।